नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने सोमवार को बताया कि उसके ऋण वितरण की वार्षिक दर सितंबर में 17% बढ़कर 34,000 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी पेटीएम ब्रांड नाम के तहत कारोबार करती है। कंपनी ने बताया कि अगस्त 2022 में उसके ऋण वितरण की वार्षिक दर 29,000 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया, हमारा ऋण वितरण व्यवसाय सितंबर में 34,000 करोड़ रुपए की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। सितंबर तिमाही में पेटीएम द्वारा वितरित ऋणों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 92 लाख हो गई, जो एक साल पहले 28.41 लाख थी। समीक्षाधीन तिमाही में पेटीएम द्वारा बांटे गए कुल ऋण की मात्रा बढ़कर 7,313 करोड़ रुपए हो गई, जो सितंबर 2021 तिमाही के 1,257 करोड़ रुपए की तुलना में 6 गुना है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया समेत 314 आवेदकों को दिल्ली में सप्ताह के सातों दिन तथा 24 घंटे परिचालन की अनुमति दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस संबंध में अधिसूचना हफ्ते भर में जारी कर दी जाएगी। अधिकारी ने बताया, अमेजॉन इंडिया उन आवेदकों में से एक है जिनके राष्ट्रीय राजधानी में 24/7 व्यवसाय एवं परिचालन करने संबंधी आवेदन मंजूर किए गए हैं। इस आशय का आवेदन अमेजॉन ने करीब 3 वर्ष पहले किया था। ये मंजूरी मिलने के बाद अमेजॉन दिल्ली में उत्पादों की दिन रात डिलीवरी कर सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस बारे में अधिसूचना 7 दिन के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, अगले सप्ताह की शुरुआत के साथ होटल, रेस्तरां, भोजनालय से लेकर भोजन, दवा, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले सेवा प्रदाता, परिवहन एवं यात्रा सेवा प्रदाता KPO और BPO को मिलाकर 300 से अधिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय राजधानी में 24 घंटे और सातों दिन परिचालन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत छूट दिए जाने से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और शहर में सकारात्मक एवं अनुकूल कारोबारी वातावरण बनने की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कच्चे माल की कीमतें घटने से साबुन के कुछ ब्रांड के दामों में 15% तक की कटौती की है। HUL ने लाइफ बॉय तथा लक्स ब्रांड के तहत पश्चिमी क्षेत्र में की जाने वाली अपनी पेशकशों में 5-11% की कटौती की है। वहीं गोदरेज समूह की कंपनी GCPL ने साबुन के दाम 13-15% घटाए हैं। विश्लेषकों का कहना है कि दामों में कटौती से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में बिक्री में वृद्धि होगी, खासकर जब उच्च मुद्रा स्फीति की वजह से कुल मांग कमजोर है। उन्होंने कहा कि दाम घटाने के पीछे पाम तेल और अन्य कच्ची सामग्री की वैश्विक कीमतों में कमी आना प्रमुख कारण है। GCPL के मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर शाह ने कहा, जिंसों की कीमतों में कमी आई है और GCPL उन FMCG कंपनियों में पहली है जिन्होंने दाम में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाया है। उन्होंने कहा, विशेषकर साबुनों के लिए GCPL ने दामों में 13-15% की कटौती की है। गोदरेज नंबर 1 के 5 साबुनों का एक पैकेट की कीमत 140 रुपये से घटाकर 120 रुपये कर दी गई है। गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना ने कई भारतीय कंपनियों के CEO के साथ मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में निवेश करने की ज़रूरत पर बल दिया है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि गुणवर्धना ने गत बृहस्पतिवार को भारतीय CEO फोरम के श्रीलंका खंड के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान उन्हें निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए कहा। इस मुलाकात में गुणवर्धना ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों के सहयोग एवं समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि ये कंपनियां नकदी की किल्लत से जूझ रहे इस देश में नया निवेश लाकर रोजगार पैदा कर और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के रूप में योगदान देकर मदद कर रही हैं। ICF के इस प्रतिनिधि मंडल में वाहन, बैंकिंग, सीमेंट, FMCG, ईंधन, आतिथ्य, अवसंरचना, लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, पेंट एवं फार्मा क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई TS प्रकाश ने की। चेक बाउंस के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय चेक जारी करने वाले के अन्य खातों से पैसा काटने और ऐसे मामलों में नए खाते खोलने पर रोक लगाने जैसे कई कदमों पर विचार कर रहा है। चेक बाउंस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंत्रालय ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें इस तरह के कई सुझाव पैदा हुए हैं। दरअसल ऐसे मामलों से कानूनी प्रणाली पर भाव पड़ता है, इसलिए कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनमें कुछ कदम कानूनी प्रक्रिया से पहले उठाने होंगे। मसलन, चेक जारी करने वाले के खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसके अन्य खातों से राशि काट लेना। सूत्रों ने बताया कि अन्य सुझावों में चेक बाउंस के मामले को कर्ज चूक की तरह लेना और इसकी जानकारी ऋण सूचना कंपनियों को देना शामिल है, जिससे कि व्यक्ति के अंक कम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि इन सुझावों को स्वीकार करने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। सरकार ने अपनी तरह के पहले कदम के रूप में IDBI बैंक में हिस्सेदारी खरीद के लिए बोलियां लगाने वाले संस्थानों के लिए पहले चरण में गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक केंद्रीय नियंत्रण वाले सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली बोलीदाता कंपनियों के लिए दूसरे चरण में सुरक्षा मंजूरी लेने की बाध्यता होती थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।